सभी रोज बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली के आधार से मनन चिंतन भी चलता है और बाबा की मुरली में कोई न कोई ऐसी विशेष बातें जो ध्यान जाता है कि बाबा हम सबसे क्या चाहता है। तो आज की मुरली से ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जो बाबा हम बच्चों से चाहता है कि बच्चों को ऐसी स्थिति बनानी चाहिए, बच्चों का ऐसा निश्चय होना चाहिए। बाबा की मुरली याद है कि नहीं? क्या थी आज की मुरली, पढ़ते हो दोबारा? समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, बाबा की याद में रह के कर्म करना। अच्छा, मुरली तो बोर्ड पर भी लिखी होती है ना, प्रश्न उत्तर लिखे होते हैं, वरदान लिखा होता है, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, कर्म क्षेत्र के अंदर रहते भी हम सब बाबा की याद में तभी रह सकते हैं जब हमारा अपने चिंतन पर ध्यान हो, क्योंकि याद का आधार चिंतन है। जिसका अच्छा श्रेष्ठ चिंतन चलता है उसको बाबा की याद नेचुरल स्वतः रहती है। और श्रेष्ठ चिंतन का आधार क्या? श्रेष्ठ चिंतन का आधार ही है बाबा की मुरली। अगर हम अपने चिंतन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मुरली सुनने के साथ साथ एक बार उसको पढ़ना भी जरूर चाहिए, क्योंकि पढ़ने से सब बातें और स्पष्ट होती हैं, अंडरलाइन होती हैं कि बाबा ने विशेष किस बात पर ध्यान खिंचवाया। और अपने पास तो मधुबन के अंदर बड़ा अच्छा साधन बाबा ने दिया है, 24 घंटे मुरली लगी रहती बोर्ड पर, पूरी मुरली घुमा करके पढ़ लो। आदत डाली कोई नहीं, पढ़ते हो कोई? पढ़ते हो? यहाँ ही बाहर रखी रहती है ना। तो अगर कोई को शौक है, इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छा एक खजाना चिंतन का बाबा की मुरली से हमको मिलता है। और जो श्रेष्ठ चिंतन करना जानता है उसकी स्थिति स्वतः श्रेष्ठ बन जाती है, क्योंकि हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हर परिस्थिति में हमारी स्थिति अच्छी रहे। परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी ये उम्मीद नहीं रखनी। परिस्थितियां तो बाबा कहता है तमोगुणी समय है, और विकराल होती जाएंगी और नए नए प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। संसार समाचार सुनो तो लगता है कि संसार में कभी कभी साकार बाबा की मुरलियों में आता था, दुख के पहाड़ गिरेंगे अंत समय में। तो ऐसे ही समाचारों से दिखाई देता है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। मनुष्य आत्माएं हर प्रकार से कहीं दुख कहीं धोखा परेशान है, अशांत है, दुखी है, कहीं प्रकृति की मार झेल रही हैं, कहीं व्यक्तियों की, कहीं भिन्न भिन्न प्रकार के भटकती हुई आत्माओं के, कहीं सरकार के, प्रकृति भी देखो कैसे कैसे नए नए खेल करती, कहीं एकदम तूफान आ जाते, कहीं भूकंप आ जाते, कहीं गर्मी जोर से पड़ जाती, कहीं बरसात तेज हो जाती, खूब बाढ़ें आ जाती। तो वैरायटी परिस्थितियां इस कलयुग के अंतिम समय की निशानियां हैं। और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आत्माओं के संस्कार, छिपे हुए संस्कार अपने समय पर अपने आप निकलते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि ये अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, सबके हर प्रकार के हिसाब किताब चुक्त होंगे। तो कई आत्माएं उसको देख करके प्रश्न करने लगती हैं, ऐसा हिसाब किताब मेरे आगे क्यों? मैंने ऐसा क्या किया इस जन्म में, या इस आत्मा ने ऐसा क्या किया जो इसके आगे इतना बड़ा पेपर आ गया। चाहे शरीर का आ जाता है, कभी धन का आ जाता है, कभी संबंधों का आ जाता है, कभी अच्छे संबंधों में ऐसा टकराव होने लगता है जो पता ही नहीं चलता है कि मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा इसका व्यवहार हो गया। होता है ना ऐसे एकदम विपरीत परिस्थितियां जो आत्मा की स्थिति को हलचल में ले आती है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छा वरदान में महावाक्य उच्चारण किया कि स्थिति का आधार है स्मृति। अगर अच्छी स्थिति बनाना चाहते हो, सुखदायी स्थिति बनाना चाहते हो, तो स्मृति सुख स्वरूप बन जाए। क्योंकि जब दुखों की स्मृति रहती है, कोई दुख की घटना घट गई और उसको हम याद कर लेते हैं तो दुख की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। इसलिए स्मृति को बाबा ने चेंज किया। हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के बने तो बाबा ने हमारी स्मृतियों को चेंज कर दिया। स्मृति दिला दिला करके, तुम कौन थे, तुम कहाँ से आए, तुम कैसे थे, बाबा की मुरलियों में स्मृति बार बार दिलाई जा रही है। चारों सब्जेक्ट जो हैं स्मृति के आधार पर हैं। याद तो कहा ही जाता है स्मृति स्वरूप बनना, बाबा की याद में रहना माना स्मृति स्वरूप बनना। बाबा कहता अभी याद दिलाने की बचपन के समय बीत गया, याद नहीं करो एक दूसरे को। पहले पहले हर जगह पर बाबा ने लिखवा दिया था, शिव बाबा याद है, जब एक दूसरे से मिलते थे तो ये पूछते रहते थे, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। और अभी किसी से पूछो तो उसे कहेगा आपको याद है क्या, उल्टा जवाब मिल जाएगा। तो याद की सब्जेक्ट माना ही स्मृति स्वरूप होकर के रहना, निरंतर बाबा की स्मृति बनी रहे। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, नेचुरल स्मृति बनी रहे, याद करना न पड़े, लेकिन मैं बाबा का हूँ एक नेचुरल एक भान रहे। आत्मा का कनेक्शन जैसे जुटा हुआ है, टूटा हुआ नहीं है। कर्म में कर्म कॉन्शियस न बन जाएं, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हैं तो कर्म तो करना ही है, कर्म तो बाबा ने कहा इसकी छुट्टी है। लेकिन कर्म करते हुए याद निरंतर बनी रहे, उसका आधार है श्रेष्ठ स्थिति। अगर कोई की स्थिति नीचे ऊपर हो रही है, मूड बदल रही है, स्थिति नीचे ऊपर होना माना मूड परिवर्तित होते रहना। अगर अच्छी स्थिति है तो उसकी निशानियां दिखाई देती हैं कि कुछ भी इसके आगे कहो, बोल दो, कुछ भी आ जाए, कितना भी काम हो, कितना भी ये व्यस्त हो, लेकिन इसका चेहरा नहीं बदलता है, बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, चेहरे पर कोई भी प्रकार का ऐसा नहीं आता, बोल इसका कभी बदलता नहीं है। नहीं तो कभी भी किसी को ज्यादा काम मिल जाए, ज्यादा सेवाएं आ जाए, कुछ नीचे ऊपर हो जाए तो फौरन चेहरा बदल जाएगा, बोल चाल में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसे ही बोलेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छी स्थिति माना एक रस मूड, हर्षित चेहरा, कभी भी नीचे ऊपर स्थिति न हो, दिखाई दे बहुत लाइट है, इतनी कारोबार होते भी, इतना व्यस्त होते हुए भी लगता नहीं कि बहुत बहुत बिजी है, बिजी दिखाई न दे, इजी दिखाई दे, सरल नेचर। तो एक रस स्थिति बनाने से हमारा निरंतर योग सहज योग हो सकता है। अब ऐसी स्थिति का आधार स्मृति है, क्या स्मृति रहे, क्योंकि हम सबको बाबा ने बहुत वैरायटी स्मृतियां दिलाई हैं। एक बार एक यहाँ पर लिस्ट निकाली गई थी, बहुत लंबी स्मृतियां बाबा ने क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। अपने अनादि काल को देखो, बाबा ने कैसे स्मृति अनादि स्वरूप की दिलाई, तुम आत्माएं क्या थी, कैसे सृष्टि मंच पर आई, जब अपने घर में थी तो तुम्हारा स्वरूप क्या था, तुम्हारी लाइट कैसी थी, तुम कहाँ रहते थे, किस स्वरूप में रहते थे, वो लाइट माइट संपन्न स्वरूप जो अनादि काल है आत्मा का, बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी संस्कार मर्ज और इमर्ज नहीं, मर्ज है सब। तो अनादि काल की स्मृति आते ही वो इमर्ज संस्कार होने लगते हैं कि मैं ऐसी आत्मा बीज थी, बिल्कुल प्योर गोल्ड, बाबा के समीप रहती थी। तो अनादिकाल की स्मृति जब चिंतन में आती है कि ऐसी आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई, यहाँ आई और रिकॉर्ड शुरू हुआ, प्ले होना शुरू हो गया, पहले वो रिकॉर्ड भरा हुआ था। तो अनादिकाल की स्मृति, फिर आदिकाल की स्मृति, कितना श्रेष्ठ पूज्य देवता, सर्व गुणों से संपन्न प्रकृति सत्व प्रधान, मुझ आत्मा का क्या भाग्य, कितना सुख, कितने वैभव, कैसा पवित्र जन्म, कैसे पवित्र संबंध प्रकृति सत्व प्रधान। अगर आप देखो अनादिकाल के साथ साथ आदिकाल की स्मृति से, अपने देव स्वरूप की स्मृति से वो रायल संस्कार, वो रायल चलन अपने आप इमर्ज होती है कि मैं ही ये देवता बनने वाला हूँ। अगर कोई अपने एम ऑब्जेक्ट इतनी ऊंची बताए मैं देवता बनने वाला हूँ, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, और उसके जीवन में कोई भी लक्षण उसके न दिखाई देते हों, कौन मानेगा उसको? अगर मैं ऐसा बनने वाला हूँ तो कम से कम वो रायल चलन, रायल खान पान, रायल व्यवहार, वो रॉयल्टी, वो प्योरिटी हमारे जीवन में, हमारी चलन से दिखाई देनी चाहिए। तब तो कहेंगे हाँ ये देवता बनने की पढ़ाई कर रहा है, इसका लक्ष्य देवता बनना, और जरूर बनेगा। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है और वो लक्षण कोई भी न दिखाई दे, जैसे दुनिया के हैं वैसे ही हमारे हों चल रहे हों, तो लक्ष्य अलग हो जाता है, लक्षण अलग हो जाता है। इसलिए अब जब बाबा हम बार बार स्मृति दिलाता है कि बच्चे तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम देव आत्माएं हो, तुम इतनी महान आत्माएं हो, जितने बाबा ने समान स्मृति में दिलाए हैं, उन समानों की स्मृति ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। अगर हम अपनी अच्छे से अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो समानों की बार बार स्मृति आनी चाहिए, बाबा ने ये समान दिया है, ये समान दिया, सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये स्मृति नहीं, ये तो परिवर्तन कर दिया बाबा ने, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम एक चैतन्य आत्मा हो, पहली स्मृति दिला दी। ये स्मृति आते ही देह भान से आत्मा डिटैच हो गई, अलग हो गई, न्यारी हो गई। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ उसकी क्वालिटीज, जब वो स्मृति रहती, मैं विजयी रतन हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, भिन्न भिन्न जो बाबा ने टाइटल्स दिए हैं, स्मृतियां समान दिलाए हैं, उनकी जितना जिसको स्मृति रहती है हर कर्म में, कर्म करते करते उस स्मृति में टिक जाए तो उसकी अच्छी स्थिति बन जाती है। तो स्थिति का आधार स्मृति है, चाहे अपने अनादिकाल की स्मृति को ले लो, चाहे आदिकाल की स्मृति को, चाहे पूज्य स्वरूप जो हमारा पूजा जा रहा है। कल दादी जानकी से हम लोग बैठे थे तो बोला जितने मंदिर बनाएंगे हम अपने मंदिरों में अपनी मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे, हम पुजारी नहीं होंगे, भगत जरूर होंगे लेकिन वो पुजारी नहीं घंटी बजा रहे हों, वो अलग होंगे, पूजा हमारी हो रही है, हम पूजा करेंगे नहीं लेकिन हम भगत जरूर कहलाएंगे क्योंकि मंदिर बनाया हमने अपने पूर्वजों का, अपने अपने ही पूज्य स्वरूप का, देव स्वरूप का मंदिर बनाया, लेकिन पूजा करने वाला पुजारी अलग होगा। वो स्मृति कि मैं कितनी पूज्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, जो अनेकों की मनोकामनाएं मेरी मूर्तियों से भी पूरी हो रही, बाबा कहता अपने पूज्य स्वरूप को स्मृति में लाओ, आपको भान आएगा कि ये मूर्ति है, इससे जैसे अनेकों को साक्षात्कार हो रहे हैं, इस दृष्टि से अनेकों को सुख शांति की प्राप्ति हो रही, अंचले मिल रही, बहुत आत्माएं कामनाएं लेकर के आ रही हैं और इस मूर्ति से सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही। स्मृति इमर्ज करो। फिर उसके बाद ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति, कितना श्रेष्ठ जीवन है, कितना ऊंचा भाग्य है, भगवान की पालना के अंदर मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, राजाओं महाराजाओं की भी पालना ऐसी नहीं होगी, कई बार बाबा कहता देवताओं की पालना ऐसी नहीं होगी, उनका तो छोटा सा परिवार होगा, अपने परिवार के बीच में रहेंगे, तुम बच्चों की पालना डायरेक्ट परमात्मा इस समय भगवान कर रहा है, सवेरे से लेकर के रात तक उस पालना का अनुभव करो। कैसे बाबा वतन से बैठ करके शक्ति देता है, सकास देता है, फिर अच्छे अच्छे चिंतन के लिए अच्छा अच्छा भोजन देता है, रोज सवेरे सवेरे अच्छी खुराक खिलाता है। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया, शायद आप सब भी समझे होंगे, मगरूरी शब्द। मगरूरी वास्तव में गलत शब्द है। मगरूरी शब्द कहते बड़ा मगरूर है, जिसको अहंकार होता है ना अपना, बहुत नशा होता है, चलने से दिखाया जा रहा है, इसकी चलन देखो कैसे बड़ा मगरूर है। कोई को कोई पोस्ट मिल जाए, कोई चार्ज मिल जाए, कोई डिपार्टमेंट मिल जाए, कोई मानसान हो जाए, कुछ अच्छा पद मिल जाए, मगरूरी आ जाते है। बात नहीं करेगा ठीक, बोलेगा ठीक नहीं, लगेगा पता नहीं क्या इसको मगरूरी है। कोई ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है ना तो बोले बड़ा मगरूर है। लेकिन बाबा उसकी जगह पर यूज एक शब्द करते हैं, बच्चे तुम बच्चों को बहुत खुमारी रहनी चाहिए। खुमारी, खुमारी माना एक अंदर का अलौकिक नशा। नशा जरूर है लेकिन वो नशा देहाभिमान वाला नहीं, मगरूरी वाला नहीं, जिसे लोगों को अच्छे वाइब्रेशन न मिले उसको कहेंगे मगरूरी। हमारे सामने से कोई आए, भयभीत हो जाए, हमसे बात न करने की दिल हो, डर जाए, लगे पता नहीं इससे बात करूंगा, पता नहीं क्या जवाब दे देगा, तो उसको कहेंगे ये मगरूर है बहुत। अगर कोई ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन किसी को मेरे चलन से, मेरे व्यवहार से फील होते हैं, माना हमारे को उल्टा नशा है उसका, अपने पद पोजिशन का। लेकिन अगर अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, कोई बहुत स्नेह में आकर के बात करता है, हम अगर अपनी खुमारी में है, अलौकिक नशे में है, बहुत जरूरी है वर्तमान समय माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए अलौकिक खुमारी में रहना। अगर ये ब्रह्मा कुमारी हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, ये भी एक नशा रहे, किसका बच्चा हूं, किसकी पालना में पल रहा हूं, कौन मुझे पढ़ा रहा है, कौन मेरा मार्गदर्शक है, कौन मेरी छत्र छाया है, चिंतन करो किसकी छत्र छाया के नीचे हम पल रहे हैं, कौन मुझे मार्गदर्शन दे रहा है, कैसे चलो, कैसे रहो, कैसे खाओ, कैसे बैठो, हर बात का मार्गदर्शन कोई गुरु नहीं दे सकता, कोई आजकल के शिक्षक नहीं दे सकते, कोई गार्जियंस दे ही नहीं सकते, वो मार्गदर्शन बाबा हम बच्चों को दे रहा है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या बना करके दी है। कहीं पर भी बच्चों को कलयुग में ठोकर न लगे, कहीं भी ये धोखा न खाएं, कहीं भी अंधकार में न फंस जाएं, उलझ न जाएं, बाबा हमको इतना स्पष्ट रास्ता दिखा रहा है, बाबा की मुरली में वो स्पष्ट रास्ता है। अगर स्पष्ट आप पढ़ो अच्छी तरह से, चलने का, जीने का एक रास्ता बाबा ने दिखाया है, हर बात का हल दिया है। कई उसमें मूंझ जाते हैं, उलझ जाते हैं, बाबा कहता बच्चे उलझो नहीं, मूंझो नहीं। अभी एक दो थोड़े दिन के बाद एक अव्यक्त मुरली आप सबके पास आएगी, सुनेंगे, बाबा ने उसमें बहुत अच्छी एक ही पॉइंट कही है, मुझे वो टच हुई। हमने कहा देखो कैसे बाबा समझा रहा है। बाबा ने कहा बच्चे सागर के आगे कभी गए हो किनारे, सागर के किनारे जाओ तो पता चलता है लहरें कैसे कैसे आती हैं। कोई कोई सागर शांत होते हैं, शीतल होते हैं, वहां पर लहरें नहीं होती, लेकिन कोई कोई सागर के किनारे जाते ही ऐसी लहरें उठती हैं, खड़े रहो एक जगह पर आ करके अपने आप भिगो करके चली जाएंगे, अगर थोड़ा अलबेला हो गया तो गिरा देंगे, वो मनोरंजन का अनुभव नहीं कराएंगे लेकिन वो उसके साथ साथ बहने लगेगा, डर जाएगा। तो बाबा ने कहा सागर, संसार को कहा जाता है, संसार एक सागर है, संसार सागर है, इस संसार सागर में लहरें न हो ऐसा नहीं हो सकता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियां, टेढ़ी बाकी उल्टी सीधी, इधर की उधर की बातें परिस्थितियों के रूप में आप सबके आगे आएंगी, क्यों आई नहीं कहो, ये सागर है, लेकिन उसमें कैसे मुझे पार होना है, कैसे उसमें मौज का अनुभव करना है, कैसे अपने को सेफ रखना है, ये सीखना है, वो सिखा रहा है बाबा। कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसे भी स्वभाव हो, कैसे भी संस्कार हो, लेकिन मेरी स्थिति उन परिस्थितियों में मौज का अनुभव करे, उसके साथ मैं बह न जाऊं, उसके साथ मैं डूबने लगूं, हाय हाय न करूं, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, ऐसा भी हुआ क्या, ऐसा भी होता है क्या, तो बाबा कहता है ये परिस्थितियां वैरायटी हैं, भिन्न भिन्न रूप में आएंगी, लेकिन अगर तुम बच्चों ने अपनी स्थिति जमाई हुई है, अच्छी बनाई है, चिंतन अच्छा किया हुआ है, ज्ञान योग का स्वरूप बने हो, ठीक परहेज रखी है, तो कोई भी परिस्थिति आपकी स्थिति को हिला नहीं सकती, पार हो जाएंगे, उसमें मौज का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करेंगे, आगे बढ़ने का। कई आत्माएं चलती हैं ब्राह्मण जीवन में, ठहरती कला का अनुभव, रुक जाएंगे, पता नहीं ठीक है, यही पार्ट है शायद, कोई कोई कह देते अरे पता नहीं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बन के फंस तो नहीं गया, न इधर का न उधर का, मंजिल ही नहीं दिखाई देती है, फिर याद करते रहते कब विनाश होगा, पता नहीं बाबा तो कहता है होगा या नहीं होगा, सोचते रहते हैं और उलझते जाते, उनको मंजिल दिखाई नहीं देती, या तो माया से युद्ध, या संस्कारों से युद्ध, या अपने संबंधों में टकराव, कोई भी प्रकार का पेपर आ गया उसमें उलझ गए, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कहाँ जाऊं किधर जाऊं, न इधर का न उधर का। ऐसी जीवन जो बाबा की छत्र छाया में पलने की जीवन, मौज के जीवन, खुशनुमा रहने की जीवन, भाग्यवान जीवन, जिसमें भगवान का साथ है, भगवान की छत्र छाया है, भगवान की पढ़ाई और पालना है, उस जीवन में अगर खुशी और मौज का अनुभव नहीं, स्थिति नीचे ऊपर हो रही है, माना हमारी स्मृतियों को हमने चेंज नहीं किया, वही पास्ट की स्मृतियां हैं, भिन्न भिन्न दुख दर्द की स्मृतियां हैं, कोई न कोई स्वभाव और संस्कार की स्मृतियां हैं, कभी कुछ हुआ है उसको याद करते रहते, दुखी होते रहते, बिंदी लगाना नहीं आता। अगर अपनी स्थिति को अच्छा रखना है तो बिंदी पास्ट को पास्ट करने की एक बहुत अच्छी आदत, बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। सेकंड, बीत गई बात, खत्म हो गई, 5000 साल के लिए बीत गई, इसका चिंतन मुझे करके दुखी नहीं होना है, ऐसा हुआ फिर होगा, बाबा कहता बच्चे ये संकल्प करना भी नेगेटिव है, पॉजिटिव सोचो, इसमें मेरा भला क्या हुआ, इससे मैंने सीखा क्या, इससे मैं आगे कितना बढ़ा, इससे मेरे अनुभव कितने बढ़े। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो बाबा कहता ये भी तुमको अनुभवी बना करके गई। एक बार एक स्थान पर, एक सेंटर पर हंगामा हुआ, आग लग गई, आग लगा दी लोगों ने, नीचे लगाई बदला लेने की भावना से, नीचे आग लगाई किसी की दुकान में, ऊपर सेंटर था, वो सेंटर का सारा सामान जल गया। बहनों ने आकर के बाबा को सुनाया, व्यक्त बाबा आए हुए थे, बाबा ऐसे ऐसे हुआ, बाबा बहुत मीठा मुस्कराए। अभी तो सब तो कहेंगे ना ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी जल गया, बड़ी बात लगेगी ना कि बाबा अगर है भगवान है इनका तो ये क्यों हुआ, नहीं जलना चाहिए था। और बाबा उसको कह रहा नहीं बच्चे अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, ये भी कल्याणकारी है। तो सब सोचने लगी ये भी कल्याणकारी, इसमें क्या कल्याण हुआ। तो वो सेंटर चौथी माली पर था, मंजिल पर था, कोई चढ़ता ही नहीं था, बुजुर्ग बेचारे हो जाए वो कैसे 7-4 मंजिल तक चढ़ेंगे, लिफ्ट थी नहीं। तो बाबा ने कहा इसी बहाने अभी तुमको नीचे सेंटर मिल जाएगा। अच्छा जो जल गया है, सबको अंदर से आया भाई इतना इनका नुकसान हुआ है, सबने देना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी चीजें जो पहले जितना था उससे डबल आ गया, मकान भी नीचे हो गया, सेंटर भी नीचे, 4 मंजिल छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, तो स्थान भी मिल गया, सामान भी उससे अच्छा आ गया, नुकसान जो दिखाई देता था बड़ा नुकसान है। बाबा ने कहा बच्चे सीख भी गए इससे, अनुभव भी बढ़ गए, तो एक में कई फायदे हो गए, इसलिए कभी भी क्यों कैसे कब क्यों हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के नकारात्मक संकल्प आप बच्चों के अंदर नहीं आने चाहिए। उसको याद करके ऐसा नहीं करो आए ऐसा क्यों हो गया, बाबा के घर को ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। तो ये बाबा हम बच्चों को सिखाता है, कोई भी परिस्थिति कलयुग की आए, कितनी भी विकराल हो, लेकिन तुम बच्चों का उसमें भी कुछ न कुछ कल्याण छिपा हुआ है, पर्दे के पीछे कल्याण है, भले ऊपर से अकल्याण भी दिखाई दे रहा हो। इतना अपने संकल्पों को पॉजिटिव बना करके चिंतन की धारा को श्रेष्ठ बना ले, अगर चिंतन हमारा श्रेष्ठ हो गया तो स्थिति अपने आप अच्छी रहेगी, हिलेगी नहीं। जो बाबा कहते हैं अंगद के समान बन जाए, कोई भी परिस्थिति रूपी रावण उसको हिला न सके, उसके लिए हम अपने चिंतन को बहुत अच्छा बनाएं, ज्ञान युक्त बनाएं। कुछ बातें जो ध्यान पर रहती हैं, सेवाएं की जाएं, खूब सेवाएं करो। बाबा तो सेवाओं के लिए हम सबको बोलता है, बहुत बड़ा जंगल पड़ा हुआ है, सारा भारत ही कितना बड़ा है, कितनी भी सेवाएं करो बेहद की हैं, लेकिन सेवाएं जहां पर विस्तार को पाती हैं वहां पर अगर विधि यथार्थ नहीं है तो बहुत विघ्न आते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, लोगों की मूड को खराब कर देती हैं, खुशी को नष्ट कर देती, जबकि सेवा शब्द इतना अच्छा है, सेवा शब्द इतना अच्छा अपने आप में, सेवा माना सुख देना, सेवा माना आराम पहुंचाना, सुख स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना, क्योंकि जिसकी जिसने सेवा की, सेवा के रिटर्न में उसको दुआ मिली। अब वो दुआ मिलने वाली आत्मा जिसको दुआएं मिल रही हों उसकी कितनी अच्छी स्थिति होगी, लेकिन सेवाएं करते हुए अगर स्थिति डगमग हो गई, तेरा मेरा ये हदें वो हदें बना करके हमने बांट दिया और टकराव की स्थिति पैदा कर ली, कहीं कहीं क्या होता है, दो कदम पर एक यहाँ से एंटर है, दूसरा वहां जाके खोल देता, ईर्ष्या द्वेष नफरत मेरेपन की भावना, बाबा की सेवा हो नहीं भावना लेकिन मेरा स्थान बढ़ जाए, मेरे स्टूडेंट आ जाए, ये जो छोटी छोटी एक लिमिटेशंस हैं वो सेवा में बहुत बड़ा रुकावट और विघ्न डालती है। इसलिए बाबा कहता बच्चे ऐसी सेवा न करो तो अच्छा है, इसका विस्तार नहीं चाहिए बाबा को, सेवा ऐसी हो जो बिल्कुल निर्विघ्न हो, करो और उसे दुआएं लो, खुशनुमा बनो, लगे लोगों को ये सच्ची सेवा कर रहे हैं। अगर बाबा की श्रीमत प्रमाण हमारी सेवाएं हैं तो श्रीमत कहती है कि कर्तापन का भान भी ना आए, करो कितना भी लेकिन मैं करता हूं, ये मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है, करामनहार बाबा है जो कराए, मैं निमित्त आत्मा हूं, बाबा को जो कराना करा ले। तो एक तो कर्तापन का भान न हो, दूसरा सेवा किया और समर्पित किया बाबा को, बाबा मैंने क्या किया, ये तो आपकी सेवा है, ये आप जानो, त्याग भावना अंदर से है, त्याग भावना भाग्य बन रहा है, सेवा नहीं कर रहा हूं ये भाग्य बना रहा हूं, चाहे तन से करो चाहे मन से करो चाहे धन से करो, जितना है शक्ति है समर्थी है बाबा कहता सफल कर लो। कई है जो करेंगे और उसका वर्णन 10 जगह कर देंगे, करेंगे थोड़ा और बताएंगे बहुत, दिखावा बहुत, मान के लिए शान के लिए महिमा के लिए, लोगों को पता पड़ जाए, लोगों नाम आ जाए हमारा, वो सेवा बाबा कहता वो मेरे खाते में नहीं है, नील। इसलिए सेवा करते हुए हमारी स्थिति अच्छी रहे, अच्छी स्थिति सेवा से बनती, और अच्छी स्थिति है तो सेवा अपने आप होती। इसलिए बाबा कहता ऐसा नहीं है कि कोई को ज्ञान सुनाया वाणी से ज्ञान दिया और मनसा अंदर अंदर डिस्टर्ब हो रही है, मन में कुछ चल रहा है और बाहर से हम कुछ बोल रहे हैं, तीनों प्रकार की सेवा एक साथ होनी चाहिए, मनसा वाचा अकर्मणा। इस वर्ष बाबा ने होमवर्क दिया है कि सेवा करते तीनों प्रकार का बैलेंस रखो, कर्मणा माना संबंध संपर्क में जो आत्मा है उनके साथ इतना गुण मुहूर्त होकर व्यवहार हो जो हमारी कथनी का प्रभाव पड़े, अगर हम कहे कुछ रहे हैं और व्यवहारिक जीवन अलग है तो वो सेवा सेवा के खाते में नहीं आती। इसलिए तीनों सेवाओं का मनसा वाचा कर्मणा, अच्छे से अच्छी शुभ भावना, रहम की भावना, देने की भावना, लेने की भावना नहीं। कई लोग सेवा करेंगे तो कहेंगे इसकी सेवा करें ना तो ये इतनी मदद करेगा, इतनी मदोगरी कराएगा, ये जमीन दे देगा, कई अभी फोन करेंगे भाई साहब छुट्टी दे दो ना ये हमको इतनी मदद करने वाला है इसको ले आऊं मैं, तो पहले से स्वार्थ रखा और सेवा कर रहे हैं उसकी। पहले सेवा करो फिर अपने आप मददगार बने, पहले से लक्षण ही हो कि ये मददगार बन रहा है इसलिए मैं इसको ले जाऊं बाबा के घर में। अगर हमारे अंदर उनसे लेने की भावना है तो हो सकता है कि वो आत्मा जो देना चाहती है वो बाबा की बजाय मुझ आत्मा को देके अपने में फंसा ले। एक बहुत सूक्ष्म कर्म फिलासफी है, अगर हम उस कर्म फिलासफी को नहीं समझ रहे हैं तो कई कहीं फंस रहे हैं, कहीं लटक रहे हैं, कहीं अटक रहे हैं। बाबा का ज्ञान इसलिए नहीं है, बहुत सोच समझ करके कहो। बाबा कहता लो एक से दो सबको, भावना ही रखो कि लेना मुझे एक बाबा से, कुछ मुझे आत्माओं से नहीं चाहिए। जब अंदर से आएगा कि मुझे कुछ आत्माओं से नहीं चाहिए, मुझे तो बाबा का दिया हुआ देना है, देते चलो अपने आप, जिसको भाग्य बनाना होगा प्रेरणा आएगी वो अपना भाग्य बनाएगा, सफल करेगा। ये मुझे दे इसलिए मैं दूं, ये मुझे मदद करे इसलिए मैं मदद करूं, ये सेवा का सब्जेक्ट ही रांग हो जाता है, लक्ष्य ही गलत। और जहां लक्ष्य गलत है वहां प्राप्तियां हो ही नहीं सकती। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी कर्म फिलॉसफी, मैं तो कभी कभी कहता हूं इतना अच्छा बाबा ने एक बात स्पष्ट समझा दी है, कहीं भी मुझाया नहीं है, उलझाया नहीं है, कौन सी बात स्पष्ट नहीं की है कर्म फिलॉसफी के अंदर, लेकिन हम उसको न पढ़ करके न चिंतन करके उलझ जाएं, मूंझ जाएं, फिर कहें क्या करें, खुशी नहीं है, योग नहीं लगता, हल्कापन नहीं, अच्छी स्थिति नहीं बनती, ये रुकावट है, ये रुकावट है। तो उसका कारण ज्ञान गलत नहीं है, बाबा गलत नहीं है, हमारी कुछ मान्यताएं या हमारी अंदर की चिंतन धारा गलत है। इसलिए आज बाबा के वरदान में था, अपनी स्मृति को चेक करो, स्मृति ही स्थिति का आधार है। जिस प्रकार की स्मृतियों में आप रहोगे, जिस प्रकार की आपकी अंदर की भावनाएं होंगी, वैसी स्थिति बनती जाएगी। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाना और वर्तमान समय के हिसाब से स्थिति ही हम सबके लिए बाबा कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। सब प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, न धन काम आएगा, न संग काम आएगा, न अन्न काम आएगा, सब तमोगुणी है। लेकिन स्थिति अच्छी है तो प्रॉपर्टी के रूप में हमारे साथ मदद करेगी, सब साधन सुविधाएं उपलब्ध करा देगी। अगर स्थिति अच्छी है, किसी की स्थिति खराब हो जाए, किसी का माइंड खराब हो जाए, किसी की स्मृति गायब हो जाए, ये बहुत बड़ी सजा है। स्मृति गायब हो गई तो क्या काम कर रहा हो? इसलिए कहते मेमोरी को ठीक रखो। स्मृति ठीक तब रहेगी जब बुद्धि बहुत शांत चित्त हो, एकाग्र हो, स्वच्छ हो, साफ हो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा बुद्धि के अंदर न हो। ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, इसने ऐसा किया, किसी के अवगुण अगर बुद्धि के अंदर नोट करते रहे तो ये बुद्धि खराब हो जाएगी, और बुद्धि खराब है तो बाबा की स्मृति नहीं रहेगी, फालतू और व्यर्थ बातों का किचड़ा उसके अंदर रहे। इसलिए बाबा ने हम सबको एकदम श्रेष्ठ स्वच्छ स्मृति का ज्ञान दिया, समझ दी, और उस स्मृति के आधार से हम अपनी अच्छी स्थिति बना सकते हैं। ओम शांति।
धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा, इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। सारे जग को पावन करने गूंज रहा शिव का नारा, इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा, इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ न्यारा, इस धरती पर सबसे पावन मधुबन।